وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. اركعوا سمعت جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلالا طیب. دیکھیں کتنی پیاری ہم نے پہلے بات پڑھی نا, کلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو اسراف نہ کرو, بس اتنا بھی نہ ایسے کھاؤ کہ بس کھانا ہی زندگی کا مقصد بن جائے, یہ بھی نہ کرو, اسراف نہ کرو. لیکن یہ بھی برا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دیں, حلال کو بھی چھوڑ دیں, طیب کو بھی چھوڑ دیں. نہیں, کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دی ہے, حلال ہے جو اور جو طیب ہے. طیب کون سا ہوتا ہے؟ پاکیزہ. بعض دفعہ کوئی چیز حلال ہوتی ہے لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کیا, اب ایک مثلا چکن حلال ہے لیکن وہ گل سڑ گیا, اس میں سمیل آ رہی ہے, اب چکن تو نہیں گلتا سکتا مطلب وہ خراب ہو گیا, تو اس کو وہ طیب نہیں رہا. کوئی پھل ہے وہ مثلا گل سڑ گیا تو اس کو نہ کھائے, طبیعت نہیں مانتی نا, جس کی طرف طبیعت کا رجحان نہ ہو. وہ سب پھر اس میں آ جاتی ہیں کہ جو طیب نہیں, طبیعت نہیں مان رہی ہے اس کی, طبیعت اسے کراہت کرتی ہے یا طبیعت نہیں اس کو چاہتی ہے. اب آپ کو کوئی کوئی ٹڈی کھائے, اب ویسے تو وہ حلال ہے لیکن طبیعت نہیں مان رہی, تو وہ جس سے پھر طبیعت بھی مائل ہو, جو پاک صاف بھی ہو, گلا سڑا نہ ہو, گندا نہ ہو, تو کھانا منع نہیں ہے. کوئی اسلام کو کوئی یہ نہیں کہ آپ سے کوئی کھانے پینے کا بیر ہے کہ بھائی کھانے پینے بند کرا دو ان کے سب کے, نہیں کھاؤ. لیکن کھا کے پھر کیا کرو, شکر ادا کرو, اور پھر کھاؤ بھی ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں کتنا پیارا طریقہ بتا دیا کہ کھانا ہے تو پھر یہ تین حصے سمجھ لیں اپنے اسٹمک کے کر لیں, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. یہ اعتدال ہے نا, یہ اب نہ کھا کے سوچنا کہ میں نیک بہت بن رہی ہوں کیونکہ میں نہیں کھا رہی, اور جو چیز میرا دل کر رہا ہے وہ حلال بھی ہے, طیب بھی ہے, میرا دل بھی کر رہا ہے کھانے کا, میں کھا سکتی بھی ہوں, لیکن بس میں نے کھانا نہیں ہے کیونکہ میں نفس کو مار رہی ہوں. یہ غلط ہے, یہ اسلام نہیں کہتا آپ کو. ہاں بعض دفعہ کچھ دن کے لیے کوئی چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کھاتی ہوں نا مجھے نیند بڑی آتی ہے, پھر میں اٹھ نہیں پاتی رات کو یہ چیز کھاتے ہوئے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. آپ تھوڑا کھا لیں, ضروری تو نہیں کہ آپ نے بہت ہی زیادہ کھانا, لیکن اب نہیں میں نے نفس کو کچلنا, تو یہ صحیح نہیں. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون, اللہ سے ڈرو وہ ذات تم جس کے اوپر ایمان لانے والے, یعنی یہ اللہ کی حدیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے احکامات دیے ہیں, ان کو مانو, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. تو یہ کہہ دینا کہ میں نفس کو جتنی تکلیف دوں گی اتنی نیک بن جاؤں گی, یہ درست رویہ نہیں. ڈرو اللہ سے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اچھا اب آپ نے دیکھا شروع کے اندر بھی اوفو بالعقود کی بات آئی تھی کہ اپنے معاہدے وغیرہ, اپنے کانٹریکٹس وغیرہ پورے کیا کرو. اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا جو باتیں بھی وہاں پہ آ چکی ہیں, اب یہ بھی حلال حرام کی بھی بات آیت نمبر 3 میں آ چکی تھی, آیت نمبر 1 میں آپ کے وہ وعدے پورے کرنے کی بات آئی. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے لغو باتوں کے بارے میں, تو قسموں کے بارے میں تو نہیں سوال کرے گا, ولیکن یواخذکم بما عقدتم الایمان, لیکن وہ تم سے سوال کرے گا کس چیز کے بارے میں, یعنی پکڑ کرے گا, مواخذہ کرے گا, حساب کتاب کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو تم نے مضبوط گرہ باندھی. تو قسمیں نا تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک قسم تو لغو قسم ہوتی ہے, جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے لغو قسموں کے بارے میں نہیں پوچھے گا. سورہ بقرہ میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اور لغو قسم کون سی ہوتی ہے؟ جو ایسے ہی جیسے بیٹھے بٹھائے, جب کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہی ہوتا ہے, قسم سے میں تو وہاں میں, قسم سے میں نے تو, یہاں جو عربوں کا تو بہت ہی زیادہ ہے, ان کی تو بات پوری نہیں ہوتی ہے, واللہ تاللہ باللہ اس طرح کر کر یہ ہر بات کو کرتے ہیں عادتاً, جیسے کوئی نیت ارادہ نہیں ہوتا, بس واللہ ایسے کہہ دینا بس. تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ارادے کے ساتھ نہیں کھائی گئی, یہ بس ایسے ہی یعنی آپ کا پارٹ آف اسپیچ ہے. دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی اس میں کہیں گے غموس, غین میم واو سین. गमूस कौन सी कसम होती है? ये झूठी कसम को कहते हैं, झूठी कसम को। यानी इंसान को पता है कि ऐसा नहीं है, यमीने गमूस, यमीने गमूस लिखे झूठी कसम। इंसान जानता है कि ये बात गलत है, फिर भी वो कहता है। मतलब बहुत सारी पास्ट की बातें खास तौर पे, मैं फ्यूचर की भी हो सकती हैं, लेकिन पास्ट की बातें खास तौर पे इंसान को यकीन होता है ऐसा नहीं था, नहीं अल्लाह की कसम है मैंने तो ये बात ही नहीं कही, हालांकि आपको पता है आपने कही, अल्लाह की कसम मैंने तो उसको इस तरह से देखा था, अल्लाह की कसम है वो ये कह रही थी, हालांकि आपको पता है उसने नहीं ऐसा कहा और आपने उसको ऐसा नहीं देखा, लेकिन आपने कसम खा ली अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए। और इसी तरह अल्लाह की कसम है तुम्हें ना कल पैसे दे दूंगी, वापस दे दूंगी, और आपकी कोई नियत नहीं है, कोई इरादा नहीं देने का। फ्यूचर की भी हो गई ना ये, एक पास की मैंने आपको मिसाल दी, फ्यूचर की देते, आप उसे चीट कर रहे हैं, उसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम है मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कसम खाती हूँ। तो अब आपने जो कसम खाई है, आपके अंदर इरादा ही नहीं है कि आपने पूरी करनी है, आपने तो उसे चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन कसम करके तो आपने उसे निकलवा लिए पैसे या कोई भी और चीज। तो ये क्या है? यमीने गमूस। अब तीसरी कसम है यमीने मुनाकिदा। यमीने मुनाकिदा क्या होती है? मुनाकदा, सॉरी मुआकदा, नून को निकाल दे, मुअक्कदा, अकद से अकद होता है ना, जैसे हम कहते हैं अकदे निकाह। तो मीम लिखे आइन कौफ दाल और गोलता, मुअक्कदा, यानी जो वो कसम जो पक्की खाई जाती है, इरादे से खाई जाती है, नियत से खाई जाती है, और इंसान का इरादा भी होता है कि मैं इसको पूरी करूंगा। मसलन आप की कसम खा लेते हैं कि मैं कल आपके घर आऊंगी, आपका इरादा है, ऐसे ही नहीं कारण उसको जस्ट बहलाने के लिए, बल्कि आपका इरादा है, लेकिन आप कल नहीं आ सके, कोई ऐसी परेशानी हो गई, कोई ऐसा मसला हो गया, तो अब क्या, इसका क्या करें? तो अब ये तीन कस्मों के तीन अलग अलग अहकाम आते हैं, इसलिए इनको समझ लें। पहला तो मैंने आपको लफ्ज़ बताया ना, लाम वाइन वाओ, उसके ऊपर तो कोई मुआवजा नहीं, जैसे यहाँ पे आ गया ये लफ्ज भी लिखा है। दूसरी कसम यमीने गमूस जो झूठी कसम है, याद रखिए इसका कोई कफारा नहीं है। क्यों नहीं कफारा इसका? इसलिए कि कफारा गुनाह को धोने के लिए होता है। कफारा ये है कि यहाँ पे मेरा गुनाह खत्म हो जाए, उसको आपने यहीं पे उसका कफारा अदा करके उसके बराबर कर दिया उसको। इस बंदे के लिए तो बस तौबा इस्तग़फ़ार है, ये तो अब अल्लाह के पास ही जाएगा। तो फिर किस टाइप की वो कसम थी, कितने उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या उसके बारे में हुआ, तो वो तो अब अल्लाह के पास ही फैसला हुआ कि अल्लाह उसको माफ करता है या नहीं करता। ठीक है, इसलिए उसको कफारा रखा ही नहीं गया, क्योंकि कफारा करके तो आपने जान छुड़ा ली अपनी ना। हाँ यमीने मुअक्किदा जो है इसका है कफारा, इसका कफारा जो है वो आगे आ रहा है, ये जो अब हम आयत पढ़ने जा रहे हैं इसमें इसका कफारा बताया गया है। ये मतलब नहीं है कि जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं किसी किस्म की भी झूठी सच्ची कसमें खा के, झूठी गवाहियां दे के, झूठा किसी के ऊपर इल्जाम लगा के कसम खा लें और उसके बाद कोई बात नहीं, हम बाद में कसम तोड़ लेंगे, हम ये कफारा दे देंगे। तो याद रखें झूठी कसम जो यमीने गमूस है उसका कोई कफारा ही नहीं, सिर्फ यमीने मुआक्किदा का कफारा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका किसी काम करने का इरादा भी था, या आपने कहा मैं इतने रोजे रखूंगी, नजर मान ली आपने, या कोई और किसी से वादा कर लिया आपने, तो अब वो आप नहीं पूरा कर सके फॉर वॉट एवर रीजन, तो अब क्या है? अब हमारे देखें, हमारे यहाँ अक्सर ये बात मशहूर है 3 रोजे रख लो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या बताया, और इसको आप लिख लें। एक तो हमारे लोगों को ना शौक बहुत होता है मन्नतें भी मांगने का, जब कोई काम नहीं हो रहा होगा इतने जोशो खरोश के साथ ऐसी बड़ी बड़ी मन्नतें मांग लेते हैं, मैं तो इतने 1000 नफल पढ़ूंगी, या मैं तो फलाना इतने रोजे रखूंगी, मैं तो ऐसे करूंगा, उसके बाद हिम्मत होती नहीं करने की। तो पहले तो सोच समझ के, क्योंकि नजर भी जो है ना वो एक इंसान का अहद है, एक कसम है जो वो खा लेता है कि मैं अब ये काम करूंगा, अपने ऊपर खुद ही फर्ज कर लेता है किसी चीज को, उसका भी यही कफारा है। तो पहले तो ऐसी नजरें ना माना करें, और अगर मान चुके हैं पास में आज तक नहीं पता था तो उसका ये कफारा अदा कर दें। तो अब देखते हैं वो लोग जो कहते हैं 3 रोजे रख लो, इसकी क्या हैसियत है। तो पहले देखते हैं फकफारा तुहु, तो कफारा उसका कौन सी कसम का, अक्तुमुल अईमान जो मैंने आपको बताई, यमीन है मुअक्किदा, अक्द से इसी से जो ये लफ्ज है, इसका कफारा है इत्आम आशराती मसाकीन, खाना खिलाना 10 मिसकीनों को, मिन औसत, औसत दर्जे का, दरमियाने दर्जे का। और बाज उलमा ने कहा औसत वसत से है, और वसत जो होता है उम्मत को भी उम्मत वसत कहा गया, और मतलब है कि बेहतरीन उम्मत, तो बेहतरीन वाला तुमने खाना खिलाना है। अब इस इनको ना इस आयत को या तो आप हाईलाइट कर लें या आप इसके हुक्म को याद कर लें प्लीज, क्योंकि ये आए दिन मेरे पास सवाल आते हैं कि हम क्या करें, ऐसा हो गया, ये हो गया, अब इसका कफारा क्या है, इस कसम का कफारा क्या हुआ। तो फिर आपको याद होनी चाहिए कौन सी कसमें हैं और इनमें से कौन सी वाली का कफारा होता है, कौन सी का कफारा नहीं होता। तो अब क्या है, 10 मिसकीनों को खाना खिलाना, चले अगर आप बहुत बेहतरीन इसका माना नहीं भी लेते तब भी एवरेज लेवल का खाना खिलाना। अच्छा, अभी इसके अंदर भी फौरन सवाल आता है, हम तो इस मुल्क में रहते हैं तो क्या इस मुल्क में रहने के मुताबिक खाना खिलाएं, या फिर हम जिस मुल्क में भेज रहे हैं पाकिस्तान इंडिया वहां भेज रहे हैं उसके मुताबिक खिलाएं। आप खाना कहाँ खाते हैं, वहां जाके खाना खाते हैं कि यहाँ खाते हैं, यहाँ खाते हैं ना, जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके मुताबिक। नहीं नहीं वहां पे तो थोड़े पैसों में खाना किसी को खिलाया जा सकता है इसलिए वहां भेज देते हैं। तो देखिए इस तरह के ना काम ना किया करें, ये तो मतलब ये हेरा फेरियां दीन में भी करते रहना। तो आपको कहा गया मिन औसती मा तो इमून अहलीकुम, उसमें से वो वाला 10 मिसकीनों को खाना खिलाओ जो औसत दर्जे का, जो तुम खिलाते हो अपने घर वालों को, घर वालों को खाना खिला रहे हैं जो एक दरमियाने दर्जे का है, वो ही अब घर वालों को भी, तो जहां पे आप रहते हैं वहीं पे आपके घर वाले हैं, आपकी फैमिली है जो वो खाना खा रही है, जितने पैसों का, एक टाइम का, दो टाइम का, आपको पता ही होगा, वो आपने देना है और 10 मिसकीनों को खिलाना है। मिसकीन होने चाहिए, ये नहीं कि घर में सहेलियों की दावत करके उनको खिला दें। अच्छा, अब इसके अंदर कितनी बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की, सुभान अल्लाह, कि ये नहीं कि कोई एक चीज मुकर्रर कर दी गई, इतने शेर, इतने किलो, इतना दिन है, बस जो तुम घर वालों को खिलाते। अब हर एक का मयार अलग होगा, आप देखिए अमीर जो है वो अपने घर वालों को कैसा खाना खिलाता है, उसके तो टेबल के ऊपर कभी 2-4 डिशेस से कम डिश ही नहीं होती। अगर चावल है तो रोटी भी है, रोटी है तो गोश्त भी है, गोश्त है तो सब्जी भी होनी चाहिए, और डिजर्ट भी होना चाहिए, और एपिटाइजर भी होना चाहिए, और फलाम भी होना चाहिए। तो उनका तो एवरेज खाना इस तरह बनता है, और एक जो गरीब है उसने तो दाल रोटी खानी है, वो उस तरह की खिला दे फिर, ठीक है। तो हर एक बंदे का अपना खाने का भी यानी मयार होगा, कोई स्टैंडर्ड होगा, उसके मुताबिक ही तुमने देना है खाना। चाहे तो आप खाना दे दे दावत पे बुला के, यानी उनको मिस्कीनों को, गरीबों को बुला के, उनको घर में बुला के खाना दे दिया, खिला दिया, या फिर उनको साथ खाना दे दिया वो ले जाए, या फिर उनको सारा राशन दे दिया उसका, बस लेकिन देना। चाहे एक कोई 10 दिनों का दे दिया, चाहे 10 को दे दिया एक दिन का, औ किस वतुहुम या कपड़ा पहनाओ, औ तहरीर रकबा या फिर एक गुलाम आजाद करो। आप देख रहे हैं कि लेस से मोर, मोर मोर की तरफ जा रहा है, यानी सबसे कम पैसों में तो खाना है आ जाता है, फिर उससे ज्यादा पैसों के कपड़े, कपड़े भी उलमा कहते हैं ऐसे नहीं अब आप किस काफ दे दें किसी को, चलो मैंने कपड़े दे दिए, नहीं कपड़ा वो जिससे सतर ढक जाए, और औरत का तो सतर पूरा ही होता है, फिर इतना कपड़ा देना चाहिए। अब देखिए ये भी 10 को देना है, ठीक है, इन 10 को या तो खाना खिला दो जो उस स्टैंडर्ड का जो आपके अपने घर में खाया जाता है, या फिर उन 10 को कपड़े पहना दो, तो ये जरा ज्यादा महंगा हो गया ना, या फिर एक गुलाम आजाद करो, ये उससे भी ज्यादा महंगा हो गया। गुलाम कोई सस्ते तो नहीं थे ना, वो तो वो बड़े महंगे होते थे। तो दीन के अंदर बेटर से बेटर होना चाहिए, ना कि हम नीचे से नीचे जाएं। खाना भी मैं वहां के मुताबिक दे दूंगी, तो जो बिल्कुल रोटी किसी तंदूर से 10 रुपए की मिलती होगी, वो एक रोटी ले ले और वहीं से सालन ले ले 10 का, वो आपका 1 डॉलर भी नहीं बनता। तो आप क्या 1 डॉलर से भी कम का खाना खाते हैं घर में? ये तो नहीं है। लेकिन यहां पे हम आके इसके अंदर भी देखे कैसे लूप होल्स निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया जो घर वाले खाते हैं। अब इसमें कहाँ है 3 रोजे? इसमें तो कहीं पे भी नहीं। लेकिन किसके लिए वो 3 रोजे? फमल्लम यजिद, ये याद रखिए, इसको हाईलाइट करें, जो ना पाए, जो ना खाना खिला सकता 10 मिसकीनों को, ना 10 को कपड़े पहन, वो भी मिसकीन होने चाहिए, अपने कजन को ही कपड़े ना लेके दे देंगे, जो उनके पास पहले इतने सूट हैं, चलो जी तोहफे में दे दिया किसी को मैंने, काम कर दिया ना अपना, नहीं, मिसकीन होना चाहिए। या आजाद करना गर्दन का, यानी गुलाम आजाद करना। अब इससे भी देखें, गुलामों की, बहुत सारे गुलामों को आजादी मिली। अगर वहां पे भी लोग सिर्फ 10 मिस्किनों को खाना ही खिलाते रहते तो गुलाम ना आजाद होते। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है, जो इतना, हर एक इतने लेवल पे नहीं जा सकता होगा, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो गुलाम आजाद करते। हर एक चूंकि नहीं कर सकता, इसलिए किसी के लिए 10 मिस्किनों को खाना खिलाना ही कह दिया, वो उसके लिए उतना ही उसका बस है, उतनी जेब है उसकी। लेकिन देखें ऊपर का भी एक दर्जा है। और आज गुलाम नहीं है तो किसी का कर्जा अदा करवा देना, या जेल में जो लोग कैद है, उन बेगुनाह जो कैद होता है, उसका कोई मतलब उसके केस के लिए कोई पैसे चाहिए जिससे उसको आजादी मिल सकती है, वो बेचारा नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो अपनी आजादी खुद हासिल कर सके, तो उसके लिए पैसे दे देना। तो जो ना पा सके, फिर वो फसियाम सलासती अय्याम, फिर वो रोजे रखे 3 दिन के। हम इधर कस्में भी धड़ाधड़ तोड़ते रहते हैं, और उसके बाद बस 3 रोजे रख के तो अपना काम भी पूरा किया, ना कोई पैसा खर्चना पड़े और ना कोई कुछ मसला हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। ज़ालिका कफ़ारतु अईमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये कफ़ारा है तुम्हारी कसमों का जब तुम कसम खाओ। ठीक है, इसी तरह बार दफा लोग कसम डाल देते हैं कि तुम्हें कसम है कि तुमने ये करना है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसे कसम डाल दे तो फिर उसको पूरा करना चाहिए, यानी फिर उसको जो उसने कसम करी है कि आप, उनको कसम है कि आप मेरी बात सुने, तो वो आप, फिर आप सुन लें उसकी बात, क्योंकि फिर वो कसम टूट जाएगी, वरना अगर आपके बस में है, वरना वैसे डालनी ही नहीं चाहिए इस तरह की। इन बातों से जरा परहेज करना चाहिए कि आप मतलब एक, क्योंकि कसम तोड़ना ना एक कोई अच्छी बात नहीं है, जो कसम होती है वो अल्लाह की होती है, इसमें आपने अल्लाह को गवाह बनाया होता है, और अगर दूसरे के ऊपर आपने कसम डाल दी उसने पूरी ना की, तो फिर क्या होगा? डालने वाले पे गुनाह होगा, तो क्यों खुद को भी गुनाहगार करते? और अगर कोई ऐसी कसम खा ले, मसलन मैंने कसम खा ली कि मैंने फलाने से कभी सारी जिंदगी बात नहीं करनी, मैं, मेरा उसके साथ खत्म है ताल्लुक, अब क्या हो? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू किसी ऐसी बात पे कसम खा ले फिर उसका गैर उससे बेहतर हो, यानी अब बात करना बेहतर है, देखिए 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से बातचीत बंद करना सही नहीं है, तो बेहतर काम कर और अपनी कसम का कफारा दे दे। फिर कसम का कफारा दे दे, हम जिस तरह किसी ने अगर अब ये कसम खा ली है कि मैंने अपनी बीवी से नहीं कभी ताल्लुक करना, मैं नहीं अब इसके पास जाऊंगा कभी, तो अब उस वक्त गुस्से में कसम खा ली, तो उसके बाद इसको तोड़ देना बेहतर है। बाद ने फिर कहा कि इसका कफारा दे के तोड़ दे, बाद ने कहा कफारे की भी जरूरत नहीं। वैसे तो ना कसमों को कसरत से खाना ही नहीं चाहिए, हर वक्त कसमें खाते जाना, क्योंकि कहीं इंसान स्लिप हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो फिर एक कफारा है इसका, ऐसे नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका कफारा रखा जाना ही पता चलता है कि इसका गुनाह होगा तोड़ने में, तभी तो रखा गया ना कफारा, उस गुनाह को मिटाने के लिए। और झूठ अगर है फिर तो भूल के भी कसम ना खाए, इसलिए क्योंकि ये कसम फिर यहां पे मामला साफ नहीं होना, फिर तो आखिरत में ही जाके साफ होगा, और कितने लोग ऐसी कस्में खा लेते हैं, नहीं ये हमने तो कसम से, हमने तो ऐसे करा, देखा दूसरों पे झूठे इल्जाम, ये सारी कस्में खा खा के कह देते हैं मैंने तो ये खाया ही नहीं, मैंने तो ये लिया ही नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं। और जिन्होंने नजरें मानी है और अब नहीं कर पा रहे, उनको अव्वल तो नजर पूरी करनी, लेकिन नहीं कर पा रहे उसको, ऐसी ही कोई बड़ी कसम खा ली है, नजर मान ली है, तो अब वो भी ये कफारा दे के और अपने आप को इससे निकाल लें। हाँ इसी तरह अगर कोई नेकी का काम आपने उसको ना करने की कसम खा ली, मेरी कसम है कि मैं आइंदा कभी भी, कसम खाती हूं कि मैं कभी अमर बिल मारूंगा नहीं अनिल मोटकर नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तो इसको देख लिया कि मुझे क्या इसका सिला मिला। अब वो जज्बात में अगर खा तो ली, अब इसका कफारा नहीं है, बल्कि इसको तोड़ देना यही इसका कफारा है, समझ लें। जाइए ना, आप कहते हैं मैं बच्चों को समझा के समझा के थक गई हूँ, अब ये तो समझ ही नहीं रहे, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैंने नहीं इनको समझाना, तो ये तो गलत बात है ना, आपने एक नेकी का काम ना करने की कसम खा ली, तो इस ऐसी कसमों को तो फौरन तोड़ देना चाहिए और उसका कोई कफारा नहीं। जालिका कफारा तो ईमानी को इदा हलफ, तो ये है कफारा कसमों का जब तुम कसम खा लो। लेकिन अब आप अल्लाह ताला ने कितनी आपको दुनिया में इसको मिटाने का एक ये उसकी रहमत है कि एक जरिया दे दिया कि हमारी जान यहाँ पे छूट जाए, वरना ये तो कसमें कई हिसाब किताब देते रहते वहां पे, तो फिर क्या होता। वाहफज हुआ ईमानकुम, इसका मतलब ये नहीं कि आप कसमों को एक जोक बना लें, उनको बस कसम खाते रहेंगे कफारे देते रहेंगे, नहीं, हिफाजत करनी है अपनी कसम की। हिफाजत करने का मतलब क्या, पूरा करो अपनी कसमों को। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान करता है अपनी आयात को ताकि तुम शुक्र अदा करो। हमारे तो दिल बड़े परेशान हो जाते हैं, हम कहाँ शुक्र अदा करते हैं, हम तो आयतें पढ़ते हैं फिर हम कहते हैं आए हाय अब ये भी हुक्म आ गया, आए हाय अब ये भी करना पड़ेगा, हालांकि आपको पता ही नहीं अहकामात में हमारे लिए कितनी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला ने देखें ये रुख्सत दे दी ना हमें, एक एक कफारा बता दिया, तो ये गुनाह यहीं पे धुल सकता है, वरना ये गुनाह है कसम तोड़ना। तो अब ये इसको ना बोझ समझे, हाय अब इतनों को खिलाना पड़ेगा, हाय तो कौन अब करे इतने को कपड़े पहनाने, ये तो बड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ये तो ऐसे हो जाएगा, नहीं इसके ऊपर शुक्र अदा करें, शुक्र है अल्लाह जान बख्शी हो गई यहीं पे, थोड़े में छूट गए आप, ठीक है। तो दुनिया में ही अल्लाह ने बता दिया कि ये करके तुम अपने गुनाह को मिटा सकते हो यहाँ पे। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमें ऐसी कस्में खाने से भी महफूज रखे कि बाद में हमें उसको कोई तोड़ना पड़े। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آيات كي تلاوة سنية.
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون